स्मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांशम् श्रीरूपां सागरजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। कल्पकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशगानोऽसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गोवर्धन परिक्रमा की इस यात्रा में। सुबह से हम सुबह से निकले हैं परिक्रमा के लिए गिरिराज गोवर्धन की। कई प्रकार की बाधाएं हमें आई तो भगवान कई बार हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए और दौरे के साथ साथ हमारी लालसा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। कभी कभी ऐसी जो कष्ट बाधाएं हैं इंपेडिमेंट्स वो हमें प्रदान करते हैं। तो भक्त को हमेशा क्या होना चाहिए, रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात। तो भक्तों को हर समय उत्साहित होना चाहिए, हर समय उसे उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति के जो शुरुआती है भक्ति में उन्नति के जो छह विधान रूप गोस्वामी ने प्रदान किए हैं उनमें से सबसे पहला है उत्साह। तो भगवत भक्ति में भगवत भक्ति के कार्यों को करने के लिए हमारे अंदर कितना उत्साह है उस पर निर्भर होता है हमारे उन्नति का उत्साह। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए आगे, निश्चयात उत्साह निश्चयात और क्या है धैर्य है। तो धैर्य एक भक्तिमय जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। धैर्य से क्या आता है, डिटर्मिनेशन आता है, दृढ़ता आ जाती है। इसलिए भगवान इस प्रकार की बाधाएं देते हैं और भक्तों को क्या नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हाँ। तो भक्त सोचते कहाँ जाएंगे परिक्रमा के लिए, आज का दिन चला गए, चलते घर में वापस जाके कहा मैं कस्टमर स्थिति में फंसा, चार पाँच घंटे, आधा घंटा नहीं पाँच घंटे भूख प्रसाद नहीं, नो लंच नो प्रॉपर ब्रेकफास्ट डिनर होगा, हाँ, और इतना ज़्यादा गर्मी पसीने छूट रहे हैं। तो भगवान ये सारी कई बार हमें बाधाएं देते हैं हमें टेस्ट कराने के लिए। इस प्रकार से भक्तिमय जीवन में या भगवान को अप्रोच करना या भगवान के भक्तों को अप्रोच करना इतना इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है। क्या है उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना होगा। हमने अपने आप को तैयारी का मतलब ही है, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कष्ट करे कृष्ण मिले, कृष्ण ऐसे वैसे नहीं मिलने वाले, कृष्ण एसी में बैठकर माला करने से इजीली नहीं मिलने वाले। हम सोचेंगे एसी बस होना चाहिए था और हमारे एसी कमरे होने चाहिए थे और जहाँ हम चलेंगे वहाँ सारे गाइडेंस होने चाहिए, हाँ तो फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण कैसे मिलेंगे? कष्ट करे कृष्ण मिले। अभी संसार में धन कमाना कितना इजी है, सरल है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। माताएं ऑफिस में जाती है अपने पति को अकेला छोड़ के, घर में बच्चों को छोड़कर कितना जिम्मेदारियां हैं, है ना। घर में माताओं का कितना मेन रोल है। जिस घर में माता जी नहीं है उस घर में कितना कष्ट होगा प्रभु जी को सारा हैंडल करने के लिए। तो धन अर्जन के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रैफिक से जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, ऑफिस के टाइम में पहुंचना है। आपका तो सरल है, गवर्नमेंट जॉब है, पता नहीं टाइम में जाते नहीं जाते जाते हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में कोई भी वस्तु कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए क्या कड़ी मेहनत है, कितनी मेहनत है। हम होटल का फोन करके खाना खाना कितना आसान है, लेकिन घर में कुकिंग करना होता है उसके लिए कितनी चीजें चाहिए होती है, गैस से लेकर हम बहुत सारी चीजों तक। तो उसी प्रकार से कृष्ण को हमारे जीवन में लाना है तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, उसके लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि कृष्ण आपके जीवन की ऐसी वस्तु है जो सारे वस्तुओं से सबसे मूल्यवान चीज है, सारे धनों से क्या है सर्वश्रेष्ठ धन है, सारे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से सबसे जो वैल्यूएबल महत्वपूर्ण वस्तु कोई है तो वह कृष्ण है। तो ये चीज को समझने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु कहते थे साधु संग सर्व शास्त्र धर्म। तो इस बात को समझने के लिए कि कृष्ण ही मेरे जीवन के महत्वपूर्ण धन है, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना होगा, नियमित रूप से साधु संग करना होगा। सनातन गोस्वामी के बारे में हम सुनते हैं, सनातन गोस्वामी जो बिल्कुल केवल माधुकरी करते थे, उनके पास कुछ रहने का ठिकाना नहीं था, पेड़ के नीचे रहते थे और सदा क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तनीय सदा हरे के नामों का कीर्तन किया करते थे। और एक ब्राह्मण जिनको अपने बेटी का शादी करना था, उनको धन की आवश्यकता थी, तो वो काशी गए, काशी में काशी विश्वनाथ को प्रार्थना करने लगे, तो शिव जी ने महादेव जी ने कहा कि मैं वैसे ही मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन वृंदावन में एक महात्मा जी हैं, उनके पास सर्वोत्कृष्ट निधि है, धन है, अब उनके पास जाओ। तो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और उनको प्रार्थना करते कि आप हमें दे दो कुछ सर्वोत्कृष्ट धन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ हाँ, एक मेरे पास पारस पत्थर है, वो पड़ा है डस्टबिन में पड़ा है, वहां से उठा के ले जाऊं। तो अभी तो उसने उठाया ले गया, पारस पत्थर आपको मिलेगा तो आप छोड़ सकते हैं। उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं, ले गया पत्नी के पास। पत्नी बहुत खुश हो गई, पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने पारस पत्थर कोड़े में रखा है तो इससे भी बढ़कर चीज उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, आप जाओ उस चीज की आकांक्षा करो, वो चीज ले लो। तो उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी को अप्रोच किया और कहा कि हे महाशय आप मुझे क्या करो, वो दे दो, इससे भी बढ़कर चीज आपके पास है वो मुझे दे दो। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये पारस पत्थर है इसको मेरे सामने यमुना में क्या करो, फेंक दो, फिर वो बहुमूल्य चीज मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने फेंका, कष्ट है कि नहीं, उसमें कष्ट है फेंकने के लिए, इतना मूल्यवान चीज को फेंकना। अभी फैसिलिटीज हमारे लाइफ में मूल्यवान है हमारे लिए, उनको त्यागना कष्ट है कि नहीं है? हाँ, कई लोग अपना घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, सोचते बिल्कुल नो, ना वही वही सीट, वही कवर, वही बेड, सब कुछ, तो वो अटैच्ड हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा त्यागो उसको और मैं इससे मूल्यवान वस्तु दूंगा। और वो मूल्यवान वस्तु क्या थी उनके पास? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, तो उनके पास कृष्ण थे, कृष्ण का नाम था, वो उन्होंने उनको प्रदान किया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम मोर देन चिंतामणि है, मोर देन पारस पत्थर है। इस प्रकार से हमारे लिए भी वही है कि हमें थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा और फिर हमें क्या प्राप्ति होगी? कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण की प्राप्ति के हेतु ही हम यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं? गोवर्धन धारी के, गिरिराज गोवर्धन के। तो आप सब मेरे पीछे बहुत ध्यान पूर्वक गिरिराज का प्रणाम मंत्र दोहराइए। नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंद दायिने। तो गिरिराज एक भक्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, गोवर्धन को अप्रोच करना। हम आगे आगे चर्चा करेंगे, टाइम तो नहीं है। मैं तो सोच के आया था कि पहले इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे 2-3 घंटे का, जिसमें हम गिरिराज का विस्तार से श्रवण करेंगे, कैसे उनको अप्रोच किया जाए, गिरिराज कौन है, कैसे प्रकट हो गए, अलग अलग भक्तों का उनके साथ कैसे संबंध है, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, परिक्रमा आदि का विधान क्या है, परिक्रमा की महिमा आदि क्या है। इस प्रणाम मंत्र में कहा गया है नमस्ते गिरिराजाय। मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, किसको प्रणाम कर रहा हूँ? गिरिराजाय, केवल गिरि नहीं है, ये कौन है? किंग ऑफ गिरि, सारे जो पर्वत है उनके राजा है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, इनका नाम क्या है? श्री गोवर्धन जी, गोवर्धन, जो हमेशा क्या है, गो मीन्स गाय और वर्धन मीन्स बढ़ाना, गोवों का वर्धन करने में लगे रहते हैं। श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय मतलब हमारे जीवन में क्लेश कभी कम हुए हैं, खत्म हुए हैं नहीं है, या शेष हुए हैं नहीं है, अशेष है, मतलब कितनी लंबी लाइन है क्लेशों की। अभी आज भी कितना बड़ा क्लेश था, 5 घंटे से हम सोच रहे थे नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से जाएंगे, कोई सोच रहा होगा आया है क्यों, मैं क्यों मैंने रजिस्टर किया अपना नाम, वो मंडे टूर में जाता है कि नहीं। तो कितने क्लेश है, शरीर क्लेश दे रहा है, गाड़ी में बॉइल हो रहे हैं आप सब लोग, है ना, कितना बॉइलिंग हो रहा था, बार बार हम नीचे जा रहे थे ऊपर आ रहे थे। हाँ, अशेष क्लेश, शरीर का क्लेश, मन का क्लेश, मन इतनी सारी बातें बना रहा था, कहाँ फंस गया, अभी ना आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और कौन सा रह गया, आदि दैविक, तीनों क्लेश आज मिल रहे थे एक साथ। तो वास्तव में इन सारे क्लेशों से मुक्त होना है, हमें किसको अप्रोच करना होगा? कृष्ण को, या कृष्ण के भक्त को, गिरिराज को। किसको? गिरिराज को। उनको प्रणाम करने मात्र से, उनके शरण ग्रहण करने मात्र से अशेष क्लेश नाशाय, सारे क्लेशों का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन परमानंद दायिने, परमानंद दायिने। हाँ, कोई व्यक्ति गोवर्धन का आश्रय लेता है उनका शेल्टर ग्रहण करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी कृपा की याचना करता है। तो ऐसे गोवर्धन इतने शक्तिशाली हैं कि वो परमानंद देने वाले हैं। अभी आनंद तो कई प्रकार के हैं, सत्वगुण का आनंद है, रजोगुण का आनंद है, तमोगुण का आनंद है। हाँ, इस जगत में तो हम भौतिक आनंद में फंसे हुए हैं। भौतिक आनंद ही हमें क्या लगता है, सर्वोच्च आनंद है। मतलब हमारी स्थिति उस कुएं में रहने वाले मेंढक के समान है जो संतुष्ट रहता है बस कुएं में, बस इससे परे कुछ आनंद है ही नहीं, लेकिन उसको पता नहीं बड़े जलाशय में कितना आनंद आई है। तो उसी प्रकार से जो परम आनंद है, जिस आनंद की हम सब लोग अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे की आखिरी सांस तक तलाश कर रहे हैं, परम आनंद दायिने। तो ऐसा जो परम आनंद है, दिव्य आनंद है, परम सुख है, वो कौन प्रदान करने वाले हैं? गिरिराज। हम कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहे, किसकी चर्चा कर रहे हैं? हाँ, सब आगे चर्चा करेंगे क्या अंतर है गिरिराज में और कृष्ण में, अंतर क्या है। तो इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हम गिरिराजाय, सारे पर्वतों के जो राजा है, मुखिया है, प्रमुख है, हेड है, ऐसे राजा का हमने शरण ग्रहण किया है, उनके चरण कमलों में आए हैं। हम कहाँ आए हैं? चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए आए हैं। क्यों वो हम गिरिराज का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि हमें गिरिधारी का आश्रय चाहिए। किसका आश्रय चाहिए? किसका? हाँ, जो गिरि को धारण करने वाले हैं। क्योंकि गिरिधारी का आश्रय, गिरिराज का आश्रय या गिरिराज का शेल्टर लिए बिना असंभव है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, निज निकट निवासम देह गोवर्धनत्वम। छह गोस्वामियों से महान जो प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि निज निकट निवासम, हे गिरिराज आपके निकट मुझे निवास प्रदान करो, देह गोवर्धनत्वम। तो इस प्रकार से गिरिराज का चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, हाँ ये कोई पर्वत ही नहीं है, हाँ ये कोई स्टोन ही नहीं है केवल, हाँ पत्थर का पर्वत है, जंगल इतने सारे पर्वत है, हम सोचेंगे कि उनके जैसा ये पर्वत है, चलो शास्त्रों में कहा है या कृष्ण ने उठाया, लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो मैं भी परिक्रमा कर लूं। लेकिन व्यक्ति जब अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिस करता है तो वो प्रैक्टिस क्या होती है, बहुत सिंसियर होती है और बहुत गंभीर होती है, और हमारा जो मन है उसमें फोकस्ड होता है। परिक्रमा तो हजारों लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों लोग हर महीने की परिक्रमा में आते हैं, या कई लोग आते हैं गिरिराज पुरुषोत्तम मास में आते हैं, गिरिराज पूजा में आते हैं, कार्तिक में आते हैं, अधिक से अधिक लोग अप्रोच करते, परिक्रमा करते, क्यों करते हैं? धनम देही जनम देही सुंदर रूपवती भार्याम देही, मुझे धन चाहिए, मुझे फॉलोवर चाहिए, मुझे सौंदर्यवान स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, मेरा फैमिली प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, इन चीजों के लिए गिरिराज के पास आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा आदि करते हैं। मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति हेतु। तो वास्तव में गिरिराज को कोई व्यक्ति इस भावना से अप्रोच करता है तो गिरिराज उसको क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सकट, वैष्णवगण कहते दो प्रकार की कृपा होती है, निष्कपट कृपा और क्या है, सकपट कृपा। तो व्यक्ति इस भावना से अप्रोच करता है, कपट की भावना से, उसको इसी भौतिक जगत में बना रहना है, इसी जीवन भौतिक जगत में स्वामी मालिक भोक्ता बने रहना है, तो उसके ऊपर गिरिराज सकपट कृपा करते हैं। ठीक है, बच्चे चाहे ले लो, सड़ो इसी जगत में, आपको वो चाहिए, धन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन गिरिराज क्या दे सकते हैं? निष्कपट कृपा। उनकी निष्कपट कृपा क्या है? वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपको कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण का प्रेम आपको दे सकते हैं। इसलिए महान महान आचार्य ये आकांक्षा करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा कि मैं गिरिराज के तलहटी में निवास करूंगा। शिक्ष गोस्वामी ये यहाँ भ्रमण करते थे, हे राधे ब्रज देवी केश ललिते, हे नंद सुना कुतः, हे गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुतः। वो भ्रमण करते थे, कृष्ण को ढूंढते थे ब्रज में, गोवर्धन आदि में। हम तो इस प्रकार से गिरिराज के चरणों का आश्रय लेना, ये भगवत भक्त के लिए या साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए, क्योंकि भौतिक जगत में भी हम किसी ना किसी के चरणों में पड़े रहते हैं, किसी के बॉस का हम चरणों में पड़े हैं, किसी ना किसी के चरणों में पड़े रहते हैं। तो लेकिन बेस्ट चरण क्या किसके हैं? गोवर्धन के हैं, कृष्ण के हैं, जिनका हमें आश्रय लेना चाहिए। और इसी की चर्चा हम आपके वेंसडे क्लास में कर रहे हैं। श्री गुरु वैष्णवे रति ना है ले आमार। तो गिरिराज ये दो प्रकार से है। गिरिराज एक तो स्वयं कृष्ण है और दूसरा क्या है? कृष्ण का टॉप मोस्ट डिवोटी है। कौन है गिरिराज? स्वयं कृष्ण ही है और कृष्ण का टॉप मोस्ट बेस्ट डिवोटी है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपके फोन्स को ऑफ करके रखिए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, अचाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, कि भक्तों की या गिरिराज जो भगवान के सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनकी सेवा छोड़कर निस्तार पाए छे केबा, जो लोग सोच रहे हैं इस भौतिक जगत से बाहर जाने की आकांक्षा कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के सागर को पार करने की अभिलाषा रखे हैं अपने हृदय में, वो कभी भी पार नहीं हो सकते। चाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। तो इसी कारण से नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, ठाकुर वैष्णव गण अवनिरस संपदा। पृथ्वी के ऊपर कोई आभूषण है, पृथ्वी की कोई संपदा है, तो वो भगवान के ऐसे महान महान भक्त हैं जो पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, जिनके चरण कमल हैं, जो निवास कर रहे हैं। इसी कारण से कहते हैं कि जो भक्त को अप्रोच, भगवान को अप्रोच करने के लिए भक्त क्या है? ब्रिज है। भक्त क्या है? भगवान के प्रति जाने के लिए ब्रिज है। अभी आपको किसी बड़े जलाशय को, नदी आदि को पार करना है, तो आप कैसे पार हो सकते हो? या तो आपके पास क्या चाहिए? नाव चाहिए, या तो आपके पास ब्रिज चाहिए, तभी आप वास्तव में उस पार जा सकते हो। तो कृष्ण तो इस जगत के नहीं है, हाँ, तीन चीजें इस जगत की नहीं है। कौन सी? भगवान, भक्ता और भक्ति। भगवान इस जगत के नहीं है, वो परव्यम आध्यात्मिक जगत की वस्तु है, और भगवान के जो भक्त हैं वो भी इस जगत के जीवात्मा नहीं है, ये इस जगत के वो है नहीं। और जो भक्ति है, जो भगवान और भक्तों के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है, जिसे भक्ति कहते हैं, वो भी भक्ति इस संसार की नहीं है, वो शुद्ध धरातल है, शुद्ध सत्वगुण का धरातल है। तो इसी कारण से जो भक्त है वो हमारे जीवन में ब्रिज का काम करता है। किस चीज का? ब्रिज, नाव का काम करता है कृष्ण को अप्रोच करने के लिए। तो इसी कारण से कृष्ण को अप्रोच करना वृंदावन में सबसे पहले उनके जो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं गिरिराज, उनको अप्रोच करना। तो गिरिराज ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमेशा यही अभिलाषा करो, आये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदो। हे नंद तनुज, हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, आये नंद तनुज किंकरम पतितम, मैं पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ, भवाम बुद्धि भव सागर में गिर गया हूँ, आप क्या करो, मुझे आपके चरण कमलों में धूलि का मुझे कण बना लो। ये अभिलाषा है। हमें यह अभिलाषा नहीं रखनी कि मुझे बहुत कुछ बड़ा बनना है। अभी इस संसार में तो हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, एक दूसरे का क्या कहते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, और होड़ में लगे हैं, स्पर्धा में लगे हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में जो भगवान का भक्त है उसकी अभिलाषा ये रहती है हाँ, कि मुझे हे कृष्ण आपके चरण कमलों का धूलि का कण बना लो। इस अभिलाषा से जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं, भक्तों को अप्रोच करते हैं, भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव में जो भगवान है वो क्या करते हैं, हमें अपने से भी बढ़कर बनाते हैं। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर जो स्थिति है, पोजीशन है, स्टेटस है, वो किसका है, भक्त का है। इसलिए वृंदावन में नंद महाराज जब छोटे से बालक थे तो कृष्ण यशोदा माता कहती थी जाओ जाओ आपके पिता के शूज लेके आओ। हाँ, कहाँ लेके आते शूज, सर के ऊपर रख के लाते हैं। और वही कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन जो उनके भक्त हैं, सेवक हैं, उनके क्या बनते हैं, ड्राइवर, शारीरिक ड्राइवर बनते हैं, सारथी बनते हैं। तो इस भावना से जब भक्त अप्रोच करता है भगवान को तो वास्तव में वो बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान हर समय अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर बनाना चाहते हैं। अभी इस संसार में भी देखते हैं कि नहीं, पिताजी अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहता, हमें जो चलता है मेरा बेटा मुझसे बढ़कर हो जाए, मुझसे बढ़कर धनवान हो, पोजीशन हो, स्थिति हो, मान आदर सम्मान आदि हो, अभिलाषा होती कि नहीं माता पिता की। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी परम पिता है और परम पिता जो कृष्ण है उनकी ये स्ट्रॉन्ग अभिलाषा है, उनका हृदय ही भगवान के लिए है। तो इसी कारण से ये बहुत आवश्यक है कि भगवान के प्रति हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। वास्तव में हम भगवत भक्ति में भगवान के चरण कमलों में अग्रसर होना चाहते हैं, अन्यथा इस संसार में बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए फिर भौतिक आकांक्षाओं को, भौतिक प्रार्थनाओं को लेकर अप्रोच करते हैं लोग। आमा भजे मागे विषय सुख, चैतन्य महाप्रभु कहते, कृष्ण कहते आमा भजे, मेरा भजन करके क्या मांग रहे हो, विषय सुख मांग रहे हो। सो चरणामृत दिया विषय भुलाए वो, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूं, भगवान कहते हैं, मैं जब थोड़ा थोड़ा भगवान के मेरे भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है गंभीरता के साथ, तो मैं उसे अपनी सेवा का, अपने नाम का, अपनी कथा का टेस्ट देता हूँ। सो चरणामृत, अपना चरणामृत देता हूँ। सो चरणामृत दिया विषय भुलाई वो, मैं उसके विषयों को, उसके हृदय में इस संसार को भोगने की जो भावना है, तीव्र कामना है, उसको भी क्या कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। तो इसी कारण से ये बहुत रहस्यमय है। गिरिराज के आश्रय में आना मतलब आप बहुत भाग्यशाली जीवात्माएं हैं। इसी कारण से गंभीरता से गिरिराज को हमें अप्रोच करना चाहिए। गिरिराज के इस महिमा को, जो ट्रांसेंडेंटल महिमा है, दिव्य जो महिमा है, उसको सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसी भावना से गिरिराज को अप्रोच करना चाहिए। तो जनरली लोग कहते नहीं नहीं हम रात को परिक्रमा में जाएंगे, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम परिक्रमा करेंगे उसका मुख नहीं देखना चाहेंगे, चाहेंगे हम नहीं, बस आपसे हम बहुत आदर करते हैं लेकिन आपका मुख नहीं देखना चाहते हम, काला काला अब ढका रहना चाहिए तभी आपसे हमारा संबंध, बस इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परिक्रमा कब करो, दिन में करो। आप फॉर्मल फॉर्मेलिटी ये करने नहीं आए हो यहाँ। एक होता है फॉर्मेलिटी, मतलब काम चलाओ, क्या कहते हैं उसको, औपचारिकता, काम चलाओ, बस जुगाड़ करना जिसे कहते हैं। पुरुषोत्तम मास खत्म हो रहा है, गिनती पूरी करना, पुरुषोत्तम मास खत्म हो रहा है, चलो अभी मेरा काम चलाओ काम करते हैं। तो हम भक्ति ये काम चलाओ नहीं है, ये एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके मनोभावना, अपने मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो गिरिराज केवल पत्थर नहीं है, कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है या कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त है। तो ऐसे टॉप मोस्ट डिवोटी को आप अप्रोच करना चाहते हो, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहते हो, और कब करना चाहते हैं हम? अंधकार में, माया है अंधकार, मैं भी अंधकार में रहना चाहता हूँ, गिरिराज आप भी अंधकार में रहिए, कोई संबंध नहीं, कोई लवलेश नहीं। कृष्ण सूर्य सम, तो कृष्ण सूर्य के समान है, तो गिरिराज से संबंध स्थापित करना है, प्रेम विकसित करना है, आसक्ति विकसित करनी है गिरिराज से, तो हमें उनको सही रूप से अप्रोच करना होगा। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान थे, पूरे हमारे आचार्यों के परंपरा में यह आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि सनातन गोस्वामी चले गए थे रात को परिक्रमा करने के लिए, या चैतन्य महाप्रभु चले गए। ये परिक्रमा की विधि इन्होंने ही शुरू की है। किसने? चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी गण और साक्षात कृष्ण ने। जब गोवर्धन की पूजा की, वो डिस्कस हम करेंगे या तो कल करेंगे, लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं महाजनो जैन गतास पंता, हमें न्यू कुछ इन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है भगवत भक्ति में। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल वैष्णवाज है, ऐसे महाजन है, महाजन कौन है? धर्म को धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो एन गतास पंथा। तो धर्म का तत्व जो हृदय में धारण करते हैं, या भगवत भक्ति के रहस्य को जो जानते हैं, उनको महाजन कहा जाता है। और ऐसे महाजनों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति में उन्नति के कदम बढ़ाने चाहिए। स्वयं कृष्ण ने अपने सारे ब्रजवासियों को लेकर बैलगाड़ी में, जो ओल्ड थे उन्होंने बैलगाड़ी में परिक्रमा की, तो पैदल चले गुणगान करते हुए। तो इसी प्रकार से ये विधान है गिरिराज को अप्रोच करने का। श्रील प्रभुपाद ने भी हमें इस्कॉन में, हम रोज गोवर्धन को याद करते हैं, करते कि नहीं करते? एक तो आप जब वो चांट करते प्रेम ध्वनि, श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के, गिरि गोवर्धन के, और दूसरा क्या है? जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरदारी। तो इतना महत्वपूर्ण है भक्तों के जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद भी गिरिराज का स्मरण हमें करवाते हैं, हमें दिया है। गिरिराज का नामोच्चारण करने मात्र से व्यक्ति परम पवित्रता को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, परम धामम परम पवित्रम, भगवान को कहा आप तो परम पवित्र हैं, तो आपको अप्रोच करना है तो हमें भी पवित्र बनना होगा। आग में जाना है तो आपके अंदर आग के गुण होने चाहिए। पानी में आपको रहना है तो मछली के समान पानी में रहने के गुण होने चाहिए। तो आपको परम पवित्र भगवान आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आध्यात्मिक गुण हमें लाने होंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में। तो इसी कारण से भगवान वो भावना, वो योग्यता प्रदान करने के लिए इस जगत में आते हैं। और अकेले नहीं आते, भगवान आते हैं अपने साथ, अपने धाम को लेकर आते हैं, और अपने धाम की जो पैराफेरनलिया है, पैराफेरनलिया का मतलब जो वस्तुएं हैं, जो भी भगवत लीला के लिए सहायक चीजें हैं, उन सब को ले आते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, मैं थोड़ा सा पैर पढ़ूंगा, प्रकृति पर व्यमे नामे धाम कृष्ण विग्रह ऐसे विभुत्यादि गुणवान सर्वगानंत विभु वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारे तहा हि विश्राम। तो इस प्राकृतिक जगत के परे परम धाम है, आध्यात्मिक जगत है, जहाँ कृष्ण कि विग्रह ना उनके विभूतियों के साथ निवास करते हैं, अकेले नहीं। कृष्ण के जो अनंत अवतार है वहां वो निवास करते हैं, वैकुंठ आदि धाम में। तारो परिभागे कृष्ण लोग ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। तो ये जगत से परे वैकुंठ धाम है और वैकुंठ से परे भी एक है, क्या है? कृष्ण लोक। कृष्ण लोक में भी तीन हाँ ये है विभाग है, द्वारका है, मथुरा है और गोकुल है। तो ऐसे गोकुल को क्या क्या नाम दिए गए हैं? सर्व परे श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। तो ऐसा जो टॉप मोस्ट धाम है जहाँ कृष्ण परम पुरुषोत्तम अपने मूल रूप श्याम सुंदर रूप में निवास करते हैं, जो श्री गोकुल है जिसको ब्रज लोक कहा जाता है या गोलोक कहा जाता है, श्वेता द्वीप कहा जाता है या वृंदावन कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? गोलोक कहा जाता है, श्वेता द्वीप कहा जाता है, श्री वृंदावन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण रे छाय, एक स्वरूप तार नाहे द्विकाय। तो व्यक्ति को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये जगत में जो धाम है भगवान का, जो ये 84 कोस ब्रज है, वृंदावन है, हाँ ये वो जगत का नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बल्कि कृष्णदास कविराज कहते हैं, ब्रह्मांडे प्रकाश मीन्स इस ब्रह्मांड में भगवान अपने मूल धाम को प्रकाशित करते हैं। कैसे प्रकाशित करते हैं? तार कृष्णेर इच्छा है, कृष्ण अपनी इच्छा से उसी धाम को इस जगत में प्रकाशित करते हैं। ऐसा नहीं कि दो हो जाते हैं, शास्त्र ये भी कहते हैं दो नहीं हो जाते, एक ही स्वरूप तार ना ही दुई काय, वो एक ही स्वरूप है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, धाम इज अपीयरिंग विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। आध्यात्मिक जगत का जो मूल भगवान का जो धाम है वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज करके इस जगत में अवतरित होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, चिंता मणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्ष देखे तार प्रपंचे रसम। तो ऐसा जो धाम जहां हम आए हैं, हाँ बल्कि भगवान के जो आध्यात्मिक जगत में जो धाम है और इस धाम में क्या अंतर है? ये धाम ज्यादा कृपामय है। क्या है? हाँ, दो चीजें इस धाम में होती हैं। एक तो आप उस धाम में इजिली नहीं जाओगे, इस शरीर से उस धाम में जा सकते हो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर चाहिए। और उस धाम में जाने के बाद फिर से इस जगत में आप आ नहीं सकते। भगवान ने कहा, यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरे धाम में जाओगे तो फिर इस धाम में आओगे नहीं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उसी धाम को इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में प्रकट कराते हैं और इस धाम में हम इसी शरीर से जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं? ये कृपा है उनकी, और फिर वापस भी जा सकते हैं। वापस जा सकते कि नहीं? भगवान कहते यद गत्वान निवर्तन्ते, लेकिन वापस जा सकते हैं। किस लिए जा सकते हैं? प्रचार करने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए। किस लिए? हाँ, नहीं तो वो जगत में कहा क्या है, काम ही नहीं है हमारा। वो जगत में करने लायक कोई कार्य ही नहीं है। भौतिक जगत में करने लायक कोई कार्य है वो है गुरु और कृष्ण की सेवा, बस। तो इसीलिए भगवान अपने धाम को इस जगत में लाते हैं, इसलिए वो कहते हैं चिंतामणिमय भूमि। ये जो धाम है चिंतामणि से बना है। अभी हम दिन रात चिंता करते हैं, किसकी? मणि की, पैसे की। लेकिन ये जो धाम चिंतामणि मीन्स टच स्टोन, पारस पत्थर से बना हुआ ये जगत है। और यहाँ के जो वृक्ष है कल्प वृक्षमय वन, यहाँ का हर हर वृक्ष डिजायर ट्री है, सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। चर्म चक्ष देखे तारा प्रपंच रसम, लेकिन इस चीज को अनुभव करने के लिए व्यक्ति के पास ये चर्म चक्षु नहीं चाहिए, चमड़े की आंखें क्वालिफाइड नहीं है इस दाम को देखने के लिए, इस दाम को देने के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। और भगवान भी भगवान के, अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखना चाह रहा था, तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, मुझे चक्षु चाहिए। भगवान ने कहा देता हूं मैं आपको, आंखें देता हूं, ददामि ते दिव्य चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो उसी प्रकार से इस धाम को देखने के लिए, धाम को अनुभव करने के लिए हमें भी आध्यात्मिक चक्षु की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक चक्षु श्री गुरु प्रदान करते हैं, भक्त प्रदान करते हैं, वैष्णवास प्रदान करते हैं, और उनकी वो फैक्ट्री है आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करने के लिए। इसे हम गाते हैं, क्या गाते हैं, चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो चक्षुदान देते हैं, उसके लिए आश्रय लेना पड़ेगा। आश्रय लैया बजे कृष्ण तार नाही तेजे, जो व्यक्ति भगवान गुरु और भक्तों का आश्रय ग्रहण करके भक्ति में लगा रहता है उनकी आज्ञा से, तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति का कभी भी त्याग नहीं कर सकते, ये गारंटी है। हम सुनेंगे कल, वैसे हम बहुत एक दिन में हम कवर नहीं कर पाएंगे हमारे सारे स्पॉट्स, हाँ यदि हमें थोड़ा थोड़ा श्रवण करना है, क्योंकि सारे स्पॉट्स गोवर्धन परिक्रमा के इतने अतुलनीय हैं, अमेजिंग है, कृष्ण लीला से, कृष्ण स्फूर्ति से भरे हुए हैं। हाँ उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अभी संसार में हम भागते हैं, पूरा जीवन, बचपन कब चला गया, यवन अवस्था कब निकल गई, बुढ़ापा कब आया, भागते भागते पता ही नहीं चला। और धाम में आते हैं तो किस लिए आते हैं, भागने के लिए आते हैं, बल्कि धाम में आना चाहिए व्यक्ति को सारे चिंताओं से रहित होकर, बस नाम रूप गुण लीला और धाम, ये पांच चीजों को आलिंगन करने के लिए आना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं और उनका ये दिव्य धाम, इसके लिए हमें आना चाहिए। हम यहाँ दौड़ने के लिए नहीं आना चाहिए, ये कोई रैट रेस नहीं है, मैराथन नहीं है दौड़ लगाने की। अभी हम सोचते गोवर्धन परिक्रमा 4 घंटे में मैंने पूरी की, लेकिन 4 घंटे फोन में ही लगा हुआ है, दिल्ली में पत्नी से बात कर रहा है, बच्चों से बात कर रहा है, ऑफिस में बात कर रहा है। अरे बाबा तुम गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा रहे हो, अपने मन को संतुष्ट कर रहे हो। मनोरथेन धावती धावती आसतो भई, कि मन के रथ में बैठा हुआ है, हाँ परिक्रमा लगा रहा है। हाँ मन कहाँ लगाओ, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो। तो मन तो हम देव को देने के लिए आए हैं, यहाँ किनको, गोवर्धन को देने के लिए आए हैं। हाँ लेकिन हम अपना मन, अभी कल हमें पता चलेगा सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ये नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए हमें गर्वित नहीं होना चाहिए कि मैं 4 घंटे में करता हूँ, 2 घंटे में करता हूँ, 6 घंटे में करता हूँ, नहीं, जितने मर्जी घंटे में करो आप गोवर्धन परिक्रमा, लेकिन किस चीज के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चर्म चक्षे, तो इसलिए वो आंखों की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय हृदयेषु विलोकयन्ति, संता सदैव, संता साधु भक्ताज वैष्णवाज सदैव हमेशा हृदयेषु अपने हृदय में भगवान को देखते हैं। कौन से भगवान को देखते हैं, यम श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर कृष्ण को देखते हैं, और कैसे देखते हैं, प्रेमांजना, प्रेम रूपी आंखों में, आंखों के द्वारा जो अंजन वो लगाते हैं उसके द्वारा देखते हैं। इसलिए है, ये चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए हमें याचना करनी पड़ेगी, चक्षुओं के लिए याचना करनी पड़ेगी, चक्षु की, चक्षुदान चाहिए हमें, क्या चाहिए, हाँ अभी तो चक्षु है लेकिन वो कृष्ण को नहीं देखना चाहते, गिरिराज को नहीं देखना चाहते, वो माया का दर्शन करना चाहते हैं। आशेष माया ते मन, आंखें हमेशा इस भौतिक संसार के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, जो सौंदर्य क्या है, शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, ऐसी चीज को देखना चाहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, ओनली वेन वन फुल्ली डेवलप्स इन अफेक्शन एंड लव टू गॉड हेड कैन सी दोज धाम्स इन देयर ओरिजिनल अपीयरेंस। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते एक जगह कि कोई फुल्ली अफेक्शन और लव भगवान के लिए, भगवान के लिए स्नेह और प्रेम भगवान के लिए जिसने विकसित किया है पूर्ण रूप से, वही व्यक्ति इस धाम के ओरिजिनल स्वरूप को देख सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी मात्रा में हमारा अफेक्शन और प्रेम भगवान के लिए है, उतनी ही मात्रा में धाम हमें क्या होगा, रिवील होगा, उतनी ही मात्रा में हम धाम से संबंध अनुभव करेंगे, धाम को उस दृष्टि से देख पाएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध अबे मन, कबे हम हेरी वो मधुर वृंदावन या श्री वृंदावन, कि हे हे कृष्ण, कब वो समय आएगा विषय छाड़िया, ये विष रूपी जो विषय है वो कब मेरे हृदय को छोड़ेंगे, और कब मेरा ये जो मलिन मल है, मन है, मलिन जो मन है, वो शुद्ध होगा। कबे हम हेरी बो मधुर वृंदावन या श्री वृंदावन, तो कब वो समय आएगा, हाँ तभी मैं देख पाऊंगा। हाँ इसलिए हाँ व्यक्ति को गंभीरता से भगवत भक्ति के जो विधि विधान है उसको पालन करना चाहिए। भगवत भक्ति कोई जोक नहीं है, भगवत भक्ति कोई मजाक नहीं है, ये क्या है, सीरियस स्टूडेंट के लिए सीरियस एक्टिविटी है। तो हम सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते कि नहीं, सुनते ही डर लग रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ नहीं, हाँ लेकिन ये वास्तविकता है। इसलिए कहते प्रेम नेत्र देखे तारा स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहा कृष्ण रविलास, कि ये आंखें प्राप्त होगी तो वो देखेगा कैसे इस धाम को, क्या देखेगा, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम रूपी आंखों से इस ब्रज की महिमा को, स्वरूप को देखेगा और क्या देखेगा, गोप गोपी संगे तहा कृष्ण रविलास, गोप गोपिया गोप सखा आदि के साथ कृष्ण के दिव्य लीलाओं को वो देख सकता है। हमारे महान महान आचार्य इन सब चीजों को देखते हैं। गोवर्धन में ऐसे कई स्थान आते हैं जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य इन्होंने कृष्ण के दिव्य लीलाओं को देखा है, वो स्थान है। तो इसी कारण से ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण अभी वृंदावन से चले गए, नहीं, एक पादम न गच्छति, कृष्ण इस ब्रज धाम को छोड़कर एक कदम भी नहीं चले जाते। ये कृष्ण को ये वृंदावन धाम बहुत अधिक प्रिय है, कैसे कोई सोच सकता है अपने प्रिय वस्तु को छोड़ के चले जाना, कोई सोच सकता है, नहीं, कृष्ण कभी अपने धाम को नहीं छोड़ते। क्यों कृष्ण को ये धाम प्रिय है, क्योंकि उनके सर्वाधिक प्रिय भक्त यहाँ निवास कर रहे हैं, और जो उनके सर्वोत्कृष्ट सेवा में लगे हुए हैं, 100% अपने आप को समर्पित करके भगवत सेवा में लगे हैं, वृंदावन के नंद महाराज यशोदा। हाँ इसलिए कृष्णदास कविराज कहते, अद्यापि यह सही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, अभी 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 भी गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं इस धाम में, कृष्ण लीला कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे बारे, कौन भाग्यवान है, कौन देख पाएगा, तो उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। इस भौतिक जगत के लिए भी हम अपने बच्चों को बचपन से क्वालिफाइड करना चाहते, चाहते कि नहीं, क्वालिफिकेशन। तो आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण प्राप्ति के लिए भी किसी ना किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। प्रभुपाद एक जगह लेक्चर दे रहे थे तो किसी ने कहा, स्वामी जी मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा मैं दिखा तो सकता हूँ आपको, लेकिन आपके पास क्या योग्यता है, भगवान को देखने की, तो उसी प्रकार से योग्यता मायने रखती है। तो इसलिए ये जो योग्यता है, ये जो क्वालिफिकेशन है, वो हमें अचीव करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं यहाँ, वो योग्यता को प्राप्त करने के लिए हम गिरिराज का आश्रय लेने के लिए आए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे, गौरा हमार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय बकत संगे। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रस्त भक्त थे, वो कहते गौरा हमारे जे सब स्थान है, गौरांग महाप्रभु जो मेरे गौरांग महाप्रभु है, हमारे चैतन्य महाप्रभु है, वो जिन जिन स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया है, उन उन स्थानों को मैं देखना चाहता हूँ, विजिट देना चाहता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। कैसे नहीं? अकेले हाँ, आप अकेले, अकेले नहीं, कैसे? भक्तों के हाँ, प्रणय भक्त संग, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, अकेले जाके क्या हुए देखूंगा, अरे पहाड़ भी है, पत्थर भी है, और सुअर भी है, ट्रैफिक भी है, और गर्मी भी है, और जाम भी है, हाँ बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन भक्तों के संग में जब हम नामाश्रय करते हैं, नाम का आश्रय लेते हुए धाम को अप्रोच करते हैं, तो वो धाम हमारे ऊपर कृपा करने लगता है। हम भगवान का जो धाम है, ये जो वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम का एक नाम माधुर्य धाम है। क्या है? माधुर्य में स्वीटनेस, मधुरता। इसी कारण से इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वो योग्यता हमें आ जाएगी तो हम क्या देखेंगे? कृष्ण को देखेंगे, जैसे श्रीमती राधिका देखती हैं, कृष्णमय कृष्ण जार भीतर बाहिरे। इसलिए श्रीमती राधिका का एक नाम कृष्णमयी है। क्या नाम है? कृष्णमयी। गुण क्या है कृष्णमयी का? कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे। कृष्णमयी वही पर्सनालिटी है जिनके अंदर और बाहर कौन है? कृष्ण है। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। तो श्रीमती राधिका जो कृष्ण भावनामृत से भरी पूरी है, जिनके अंदर और बाहर कृष्ण है, और जहां जहां वो नेत्र डाल रही है वहां कौन स्फुरित हो रहे हैं? कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं। और यही एक भगवत भक्ति की आकांक्षा है। हाँ, तो ऐसे जो महान भगवत भक्त हैं गिरिराज, गोवर्धन, हाँ वो योमा पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति, भगवान गीता में भी उसी चीज को कह रहे हैं। हाँ, तो ये क्वालिफिकेशन तभी आएगा जब हम भगवान के धाम को अप्रोच करते हैं, और धाम में भी गिरिराज को अप्रोच करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं वृंदावन में तीन चीजें हैं जो आपको भगवत प्रेम दे सकती हैं। एक है गिरिराज, कौन है? दूसरा है यमुना, कौन है? तीसरा है ललिता देवी, कौन? वैसे तो ब्रज की हर चीज आपको कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है। यहाँ की डस्ट है, यहाँ का पत्थर है, यहाँ का क्रीपर है, यहाँ का ट्री है, यहाँ का मंकी है, ये सब आपको क्या दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास वो कृष्ण प्रेम है, वो सर्व सामान्य नहीं है। हाँ, यहाँ के निवासी आदि क्या है? सर्व सामान्य नहीं है। इसलिए इस धाम को ब्रज कहा गया है। तो ऐसा ही जो वृंदावन है, ब्रज है, ये 48 वनों से बनकर मिलकर बना है। कितने वनों से? हाँ, तो ये इसमें चार प्रकार के वन है, एक है वन, एक है उपवन, दूसरा है प्रतिवन, और एक है अधिवन। ऐसे 12, 12, 12 और 12 कितने हो गए? 48। लेकिन इनमें जो प्रमुख है वो 12 वन है। तो उन 12 वनों के नाम मैं उच्चारण करता हूं अब अपनी शुद्धि के लिए। एक है मधुवन, तालवन, बोलिए कुमुदवान, बहुलावान, काम्यवान, खादिरवान, वृंदावान, भद्रवान, भांडिरवान, बेलवान, लोहवान और महावान। तो भगवान का जन्म महावन में हुआ था, गोकुल में, और नंदगांव या बरसन आदि काम्य वन में आता है, और वृंदावन इन सारे 84 कोस में है। ये ब्रज भूमि कितने कोस में है? 84 कोस में। इस पूरे को वृंदावन कहा जाता है। 12 वर्णों में सबसे बड़ा वन वृंदावन ही है, और सारे वनों को मिलकर भी क्या कहा जाता है? वृंदावन कहा जाता है। तो इनमें जो ये चौथा प्रकार है आधिवन, तो ये गोवर्धन को आधिवन भी कहा जाता है। आधिवन का एक भाग है गोवर्धन, क्या है? आधिवन कैटेगरी में आता है। तो इसलिए ये जो धाम है जिसकी विशेषता का हमें थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्या होगा फिर धाम के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा। अभी आपको दिल्ली के मेन मेन स्थानों का वर्णन किया जाए, लाल किला ऐसा है, पांडव किला है, जू है, और फिर कुतुब मीनार है। अभी जो दूर रहने वाले दिल्ली से, उनको आप ये सब स्थानों का वर्णन करोगे तो क्या होगा उनको? क्या होगा? कब मैं कुतुब मीनार की लंबाई चौड़ाई देखने जाऊँ? कब मैं वो टूटा फूटा लाल किला देखने जाऊँ? पांडव किला के वहाँ कौन सा जू है? चिड़ियाघर, पता नहीं क्या क्या है। इस प्रकार से इस भौतिक संसार में भी हम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हाँ, जिनको हम सुनते रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। अब वहाँ जाने की अभिलाषा है, वहाँ जाकर भी हम परम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसलिए ये आवश्यक है कि धाम की महिमा को, धाम के स्थानों को बारंबार विजिट करना, क्योंकि आप ऐसे स्थान में रहने जा रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए ना कहाँ रहने जा रहे हो आप। आप जाना चाहते कि नहीं भगवान के धाम वैकुंठ? हाँ, तो पहले पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जानना चाहिए। और आप चले गए और कहे कि ये उचित नहीं है, ठीक नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन इसलिए ये आवश्यक है, शास्त्र जोर देते हैं बारंबार इस चीज पर। तो हम कल सुनेंगे, हाँ, गोवर्धन के विशेष, गोवर्धन के जो चर्चा है कि किस प्रकार से गोवर्धन आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुआ, किस प्रकार से ये जगत में प्राकट्य हुआ, और फिर गोवर्धन की विशेषता क्या है, क्यों भगवान का ये टॉप मोस्ट डिवोटी है, क्या क्या गोवर्धन करता है, और किस प्रकार से गोवर्धन की ग्लोरीज, या कृष्ण को कितना अधिक ये गोवर्धन प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध था, चैतन्य महाप्रभु ने हमें कैसे सिखाया गोवर्धन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, गोवर्धन के नजदीक जाने के लिए हमें क्या रहस्य है, या हमारे जो महान महान आचार्य हुए हैं उनका गोवर्धन के साथ कैसे संबंध रहा। हाँ, तो कल हम प्रयास करेंगे, आज तो बज गए, कल हम इन सब चीजों को श्रवण करेंगे अपने शुद्धि के लिए, ताकि गोवर्धन की जो कृपा है और हमें प्राप्त हो जाए। गिरिराज गोवर्धन के जय, जोर से गिरिराज गोवर्धन के जय।